ओम शांति। बाबा के प्रोग्राम जब भी चलते हैं तो हमें बाबा की मुरली से कोई ना कोई एक अच्छी बात सीख लेनी होती है। अब भी बाबा का बहुत अच्छा अनुभव कईयों को हो गया तो हमें बाबा के महावाक्यों से कोई अच्छी बात सीखनी है। अविनाशी क्या चीज है? बोलो, खुशी। इसको विनाशी नहीं बनाना है। अब बाबा ने एक चीज हमें दे दी, अब संभालना हमारे का हाथ में। माया दखल न डाले, बाबा ये शब्द बहुत प्रयोग कर रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे तीन तख्त पर बाबा ने हमें बैठा दिया। कोई भी संसार में कभी भी तीन तख्त पर नहीं बैठेगा, सतयुग में भी नहीं, एक ही होगा। कौन से तीन तख्त? पहला स्वराज अधिकारी, स्वराज का तख्त। दूसरा दिल तख्त बाबा का। तीसरा भविष्य। तीनों ही बहुत बड़े हैं। बाबा के दिल पर राज करना, दिल तख्त पे बैठना अर्थात बाबा के दिल पर राज करना कौन करेंगे? बोलो विजय बाबू, कौन करेंगे? कौन? बच्चे नहीं, कौन? एक तो जो सच्चे दिल वाले होंगे, सन्नी ने बताया अमृत वेले वाले होंगे, वो तो बहुत अच्छी बात थी, याद है ना? और कौन करेंगे? भगवान के दिल पर राज अर्थात उसके दिल को जीत लें हम। एक ही बार ये मौका मिलता है, भक्ति में नहीं। जब हम भगवान के दिल पर राज कर सकते हैं, किसी के दिल पे चढ़ जाना, फिर वो कितनी दुआएं, कितनी मदद, क्या क्या मिलेगा उससे हम सोच लें। कौन चढ़ेंगे बाबा के दिल पर? पवित्र आत्माएं, बहुत अच्छी बात है। और ठहरो, बहनों को बोलने दो, भाइयों ने बहुत बोल दिया। बोलो बहने, सच्ची दिल वाले। किसे कहते हैं सच्ची दिल? पाप करो और बाबा को बता दो, इसको भी सच्ची दिल नहीं कहते। एक टोटल सच्चाई पे चलने वाला जीवन। कई लोग बात बात में गड़बड़ करते हैं, बात बात में। वो किसी को भी प्रिय नहीं होते, मनुष्यों को भी प्रिय नहीं होते, उन पे कोई विश्वास भी नहीं करेगा। पहले ही सोचेंगे पता नहीं ठीक बोल रहा है या गलत। सच्चाई, असली सच्चाई, एक तो बोलने की व्यवहार में तो है ही, पर असली सच्चाई है अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना। ये असली सच्चाई है। बहुत पवित्र आत्माएं तो बाबा को बहुत आकर्षित करती हैं। वो तो परमधाम में भी बाबा के समीप रहती हैं। और कौन बाबा के दिल को जीतेगा? पहली पहली बात, पहली, जो उसके आज्ञाकारी बनेंगे। आज्ञाकारी, जो उसके कार्यों को संभालेंगे। लौकिक में भी यही होता है, बच्चे बाप के बिजनेस को अच्छा संभाल ले तो वो दिल पर रहेगा, उसके लिए बाप कुछ भी करने को तैयार रहेगा। बाबा के कार्य को संभालना, उस कार्य में यदि मैं पना गया तो बहुत बड़ी मिसिंग। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह अपनाते चलें। मुरली में था करावन हार, करा रहा है, हम सब निमित्त हैं, लेकिन वो कराएगा उससे ही जो सिंपल भाषा जो करना चाहेंगे, जो योग्य भी होंगे और करना भी चाहेंगे। मान लो सवेरे उठने की बात है, अब हमने मन ही बना लिया हो, अरे बहुत बार उठ के देख लिया कुछ तो होता नहीं, योग भी नहीं लगता अपना, तो नींद आती है, सारा दिन भी थके थके रहते हैं। कई लोग पहले से ही प्लान बना लेते हैं, अभी देर तक तो काम धंधों से आए हैं, अभी सवेरे उठने की नई टेंशन, तो बाबा उन्हें मदद करेगा नहीं। और कुछ माताएं मुझे सुनाती हैं, चाहे हम 1 बजे सोएं, 4 बजे उठ के अच्छा योग करते ही हैं, तो उन्हें मदद मिलती है ना, मदद मिलती है। कुछ कुमार मेरे पास आए, इस बार 3 आए, जिन्होंने कहा जब से हम ज्ञान में चले हैं हमारा अमृत वेला कभी मिस नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है ना। चलो कभी योग पावरफुल हुआ, कभी हल्का हुआ, वो तो अलग बात है, पर ऐसी आत्माओं को बाबा की दुआएं बहुत मिलती हैं। और भगवान की दुआएं लेना ये छोटी बात है क्या? भक्ति में तो बोलते ही रहे, मुस्लिम रिलीजन में तो आप सुनते हो ना, भगवान खुदा से दुआ करो, दुआ मांगो, उनके यहां तो सब दिए है। यद्यपि उनको दुआएं बहुत कम मिली हैं, दुआएं किसको मिली? देवकुल की आत्माओं को दुआएं उन्हें मिली जिन्होंने उसके कार्यों को सफल किया, पूर्ण किया, जो उसके आज्ञाकारी बने। और जो उसके नाम पे हिंसा ही करते रहे, लड़ते झगड़ते रहे, वो उससे दूर रहे। तो हम सभी बाबा के दिल तख्त नसीन भी बने। सब सोचेंगे बाबा मुझे बहुत प्यार करता होगा या नहीं, सब सोचेंगे। लेकिन कई लोग बहुत निगेटिव होते हैं, बाबा तो मुझे प्यार करता ही नहीं, करता होता तो स्टेज पे बुला लेता। 5-7 साल पहले एक बहुत चली ये बात, 5-7 साल पहले नहीं, 10 साल पहले, कि बाबा तो इन इन को प्यार करता है, हमें नहीं करता। लेकिन बाबा जो अति सूक्ष्म है और निराकार भी है, उसका प्यार स्थूलता से नहीं आंका जा सकता। वो तो जो उसके सामने बैठा होगा उसको प्यार की दृष्टि देगा ही ना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम दूर बैठे तो हमें उसका प्यार नहीं मिलेगा, उसका प्यार हमें फील होगा रोज। हम कितने उसके समीप हैं ये स्थूल समीपता से नहीं नापा जा सकता। उसकी मदद, प्यार है तो बहुत मदद का अनुभव होगा। इस मुरली में एक बहुत गहरी बात थी, मैं आपको केवल वो याद दिलाता हूं और उस पर सभी जरा चिंतन करेंगे। सतयुग का 1 राज प्राप्त करना है तो कुछ और था, हमारे मन पर 1 का राज हो। इस तरह देखें आप इसे, हमारे मन पर 1 का राज, उसकी आज्ञाओं का राज्य, जो वो कह रहा है वही हो, माया दखल न डालती हो इस राज्य में। बहुत अच्छे चिंतन का विषय है, अपने को देखने का विषय है, हमारा मन किसके अधिकार में चलता है, सोचेंगे अच्छी तरह और अपने जीवन को देखेंगे। परिस्थितियां आ गई तो परिस्थितियों के वश चलता है, किसी मनुष्य ने बुरा व्यवहार कर दिया तो उसके वश चलता है, कोई इच्छा पूर्ण न हुई उसके आधार पर चलता है, कोई जीवन में बड़ा डिस्टर्बेंस आ गया उसके आधार पे चलता है। चलता है या नहीं, हमें देखना है कि बाबा का राज है मेरे मन पर, जैसे वो चलाना चाहता है वैसा ही ये चलता है। बहुत गहरी बात है सुरेश भाई, मोटी नहीं है, सब अपने अपने को देखेंगे, चिंतन करेंगे। हमारा पहला तख्त स्वराज का है, मन पर राज, बुद्धि पर राज और संस्कार संस्कारों पर भी हमारा राज्य हो। संस्कार, पहले हम संस्कारों को लेंगे आज। हम संस्कारों के मालिक हैं, संस्कार हमारे हैं। संस्कार अगर बिगाड़े हैं तो हमने बिगाड़े हैं, वाप ही नहीं बिगड़े, हमने उनको श्रेष्ठ बनाया था, हमने उनको बिगाड़ा है। हम उनके मालिक हैं, क्रिएटर हैं। अब हम उनको फिर से कैसा बनाएंगे? देव संस्कारों में बदलेंगे। पांच संस्कार निकाल दे जरा देवताओं के, बोलो। देवता माना जो वहां चलते हैं वही नहीं, पर जो देवी संस्कार माने जाते हैं। जैसे एक सुखदाई संस्कार, बोलो आप हैं, एकमत होकर चलना। बोलो डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं? परोपकार के संस्कार, हर्षित, बहुत हर्षित, सहयोग देने का संस्कार। हर्षित क्वालिटी है, गुणों में आएगा संस्कार। जैसे सहयोग देने का संस्कार होता है किसी का, भाई जिसको भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी देंगे, अपना समय भी नहीं है तो भी सहयोग देंगे, किसी को कैसी भी जरूरत पड़ी मदद करेंगे। ये बहुतों में आदत है और भारत में ये बहुत ज्यादा रही है, क्योंकि देव संस्कार यहाँ बहुत ज्यादा थे। और पवित्रता के संस्कार, ये भी संस्कार ही होते हैं। दातापन के संस्कार, बहुत अच्छा। पीछे वाली बहने बोले हैं क्या? प्रेम देने के संस्कार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। परिवार की भावना, हम बस चेक करेंगे अपने को, अगर हम में कोई संस्कार ऐसा है जो दूसरों को प्रिय नहीं है। हम मालिक हैं, मालिक बनकर अपने संस्कारों को जल्दी ही बदल सकेंगे। ये बात सूक्ष्म बात सभी ख्यालों में रखें। अगर हम इस नशे में रहने लगे, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, तो संकल्पों से ही हम बहुत कुछ कर पाएंगे, मालिक हो गए। मालिक के बारे में और भी बात कही थी बाबा ने मुरली में, मालिक अर्थात जिस खजाने को, जिस शक्ति को जैसे यूज करना चाहें कर सकें। याद है ना, आह्वान करें समाने की, समेटने की, कौन सी कहा था, समाने की शक्ति का, और समाया जाए ही नहीं, मन चलता ही रहे। हम सोचे अरे छोड़ो ना, इस बात को खत्म कर दो, हो ही ना खत्म, तो हम मालिक नहीं बने। तो हमें अपने पुरुषार्थ में, अब इसको बहुत गहराई से परेशान जैसा होने की जरूरत नहीं, मैं मालिक हूं, जैसे मैं आत्मा देह की मालिक हूं। यदि हमें ये बहुत नशा चढ़ जाए, सोचो, मैं भी कभी कभी ये किया करता हूं, आप भी सब करें और इसके प्रयोग करें। यदि हमें ये बहुत नशा चढ़ जाए कि मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं और देह में कहीं पीड़ा हो रही है, तब प्रयोग करेंगे ना, तो मैं मालिक हूं तुम्हारी, अब तुम इस पीड़ा से मुक्त रहो, या ये पीड़ा शांत हो जाए और रिजल्ट देखेंगे। ये छोटा सा प्रयोग, मैं आत्मा मन की मालिक हूं, सबसे बड़ा सब्जेक्ट, मन को कंट्रोल करना, मन पर विजय प्राप्त करना, मन को अपने ढंग से चलाना, मन को अच्छी दिशा देना, ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है संसार में। तो शुरू में लोगों ने किया, थोड़े बहुत तपस्वियों ने, पीछे तो ये बात छूट गई। और जिन्होंने अपने मन पर काबू कर लिया, उनको अनेक सिद्धियां प्राप्त हो गई। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा था, चाणक्य के समय थे ये। योग दर्शन में एक ही बात है, निसंकल्प समाधि तक पहुंचना। उसके लिए पहले कुछ नियम बनाए, फिर आसन प्राणायाम करे ताकि हेल्थ अच्छी रहे, फिर ध्यान सिखाया और ध्यान लगाते लगाते मन को निसंकल्प करना था। उसने सावधान किया कि जब तुम्हारा मन निसंकल्प समाधि में आ जाएगा तो तुम्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिद्धि जिस व्यक्ति को मिलती है वो क्या गड़बड़ करता है, वो दिखाने लगता उसे चमत्कार और पैसा कमाने में लग जाता है। और एक सन्यासी पैसा तो पहले ही छोड़ के आया था, वो पैसे के पीछे लग जाए तो खेल सारा बिगड़ता है। उसका तो बिगड़ता ही है, लेकिन एक परंपरा गलत होती है, जो गलत होते होते आज संपूर्ण गलत हो गई। सबसे बड़े सेठ कौन है आजकल दुनिया में, सन्यासी है या नहीं? क्योंकि एक गलत परंपरा किसी ने चालू की, वहां से बढ़ गई आगे। हम भी, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, इस स्वरूप में रहकर मन को कंट्रोल करें, अच्छी दिशा दें। इससे हमें बाबा ने सिद्धि को क्या कहा, बोलो, सिद्धि को दूसरा शब्द दे दिया, बोलो, सफलता। बाबा ने वैसी सिद्धियों के बारे में हमें नहीं बताया, उसे अलग रखा है, सफलता। जो कार्य करेंगे सफल होंगे, कहीं सेवा करेंगे सफल होंगे, लौकिक में भी आपका बिजनेस है सफल होंगे, कोई नया काम आपने किया तुरंत सफल होंगे, ये है सिद्धि। तो जितने हमारे संकल्प पॉजिटिव होंगे उतनी सहज सफलता प्राप्त होगी। तो ये हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और लंबे काल से चलता आया है, स्वराज्य अधिकारी हो। बाबा ने हमें ये स्मृति दिलाई है। तो मैं आत्मा, दोनों शब्द जोड़ेंगे, दोनों स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, राजा पावरफुल होगा ना, और इस सिंहासन पर विराजमान हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। सब प्रैक्टिस करेंगे, आज सोते समय भी करेंगे, कल उठते ही यही याद आए, मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वराज्य अधिकारी, राजा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं। बहुत अच्छी फीलिंग हमें बढ़ाते चलना है, मैं मालिक हूं मन की, जैसे मन से बात करते रहे, मेरे मन मैं तुम्हारी मालिक हूं, इधर नहीं जाना है। बाबा की मुरलियां आपको याद हो, अपने कर्मचारियों पर दरबार लगाया करो, मन है मंत्री, बुद्धि है महामंत्री मुख्यमंत्री, और ये संस्कार हैं तुम्हारे कर्मचारी, ये सब ऑर्डर में चलने चाहिए। ऐसा नहीं हो मंत्री राज कर बैठे, बहुत जगह ऐसा हुआ है, मंत्रियों ने राज ले लिया है, कई जगह सेनापतियों ने राज ले लिया है, पाकिस्तान में तो होता ही रहता है, जनरली राज ले लेते हैं। लेकिन इतिहास में भी होता रहा, जब सेनापति ने देखा कि जो सम्राट है वो योग्य नहीं है, प्रजा उससे दुखी होती जा रही है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, कई बार हुआ है ये, तो सेनापति ने स्वयं उसको हटा के सत्ता पर अधिकार जमा लिया, खूनरेजी नहीं हुई, उसके परिवारों को भी कष्ट नहीं दिया, लेकिन खुद सत्ता ली ताकि फिर से भारत स्ट्रांग हो। कई बार ऐसा हुआ द्वापर युग में भी, अब हम जानते ना द्वापर युग, मौर्य वंश भी चला, 7 पीढ़ी शायद चली, आखिरी जो सम्राट था उसमें क्या हुआ, वो विदेशियों की तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगा, अपने शासन पर कम ध्यान देने लगा। सेनापति ने जब देखा ये हो रहा है, अशांति होती जा रही सेना के बीच भी, सेना कभी विद्रोह भी कर सकती है, उसने सत्ता ले ली, तो फिर दूसरा वंश चला। तो ये इतिहास में होता रहा, यहां से शुरू होता है, मन मंत्री अगर हमारा राजा बन जाए, हमें नचाने लगे। जो मैं कहूंगा वही तुम्हें करना है, तुम मालिक नहीं मैं मालिक हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो सभी अपने को देखें और बात करें, मन हमारा मालिक है या हम मन के मालिक हैं। बस करना इतना है। इस थ्योरी में ज्यादा जाएंगे तो शायद परेशानी होने लगे। अपने मन में सुंदर संकल्पों की रचना करें तो मन हमारे कंट्रोल में होने लगेगा। हम रचना दें इस मन को, हम संकल्प दें अपने मन को, मन आपे ही न सोचे। और ये काम बहुत सहज है अगर हम रोज की सवेरे की मुरली से या रोज सवेरे अपने मन के लिए कुछ काम रख लें तो मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। बहुत बार मुरलियां चली हैं, ये सबसे पावरफुल मुरलियां हैं ये, कि तुम अपने मन बुद्धि की प्लानिंग करो, उनका टाइम टेबल बनाओ, सारा दिन उन्हें किस किस स्थिति में रहना है ये फिक्स करो, तो कंट्रोल में रहेंगे। बुद्धि मुख्यमंत्री, क्यों मुख्यमंत्री है बुद्धि? बुद्धि में ही सारा ज्ञान हम भरते हैं, बुद्धि ही सब चीजों का निर्माण कर रही है। मन को कंट्रोल करने वाली भी बुद्धि, संस्कारों को बनाने वाली भी बुद्धि। एक व्यक्ति की बुद्धि ने विचार कर लिया कि अब कलयुग के अंत में धन का ही महत्व है, जिसके पास धन ज्यादा है वही वीआईपी है, उसी का नाम है। बैठे हैं ना ग्रस्त वाले, तो क्या करते हैं लोग, जैसे भी चाहिए धन बढ़ाना है, पाप कितना भी करना पड़े धन बढ़ाओ। तो संस्कार किससे बना? बुद्धि के एक विचार से। मन में है संकल्प और विचारधारा है बुद्धि में, दोनों अलग अलग हो गए। विचारधाराएं, जैसे विचार हमने निर्मित किए हैं अपने जीवन के लिए, कई लोग जैसे ऐसे विचारों के होते हैं दुनिया में, ज्ञान में आ गए, दोनों आ गए, अब क्या कहेंगे, बहुत तेज नहीं चलना होता, आराम से धीरे धीरे पुरुषार्थ करो, कहीं भी ज्यादा नहीं घुसना चाहिए, धीरे धीरे। कुछ लोग ऐसे हमें बताते हैं, हमें पता चलता है उनसे ही कि भाई हमने तो ये प्लान बनाया हुआ है। मैंने कहा ठीक है, आप सतयुग में भी धीरे धीरे घुसेंगे, कोई हर्जा नहीं, ये तो प्लानिंग है ना आपके भाग्य की, वो तो जो जिसका भाग्य है उस अनुसार ही पीछे रिवर्स हो रहे ना संकल्प। तो बुद्धि जिसमें हम ज्ञान अपना रहे हैं, जिसमें हमने शक्तियां भरी हैं, जिसमें सारे गुण भरे जाते हैं, ये धारणा शक्ति हमारी बुद्धि है। जो कुछ भी हम धारण कर रहे हैं, सवेरे हम मुरली सुनते हैं, ज्ञान समाया जाता है किसमें? बुद्धि में। आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, बुद्धि में सब कुछ समाया जाएगा। बुद्धि अगर कैसी है, क्यों नहीं ज्ञान समाया जाता? बुद्धि कैसी होती है? पहले ही फुल किया हुआ है मेमोरी कार्ड, आजकल की भाषा, माताओं को पता है ना मेमोरी कार्ड, आपके उसमें भी लगता है मोबाइल में, फोटो नहीं आ रहे तो कहेगा भाई अब फुल हो गया है मेमोरी कार्ड, नहीं उसको तो कुछ और कहते हैं, वो फुल हो गया है, तो कुछ डिलीट करो कुछ फोटो तब नए खींच सकते। कईयों ने अपनी बुद्धि को फुल कर दिया है तो नई बात ठहरती नहीं है। इस पे बहुत ध्यान देना है कि कहीं हमने अपनी बुद्धि को ऐसे वैसी चीजों से फुल तो नहीं कर लिया है और अच्छी चीजों के लिए जगह ही नहीं बची है। बहुत अच्छी चीजें कौन सी हैं जो हमें बुद्धि में लानी है, बोलो सबसे अच्छी चीज कौन सी है? और भी बताओ, उससे भी अच्छी, उससे भी अच्छी। हाँ बाबा तो है, उससे अच्छा तो कोई नहीं। हेम सिंह भाई की बात तो फाइनल हो गई, लेकिन बाबा के द्वारा दिए गए वरदान पहली चीज। हाँ, कोई भी वरदान, फिर शक्तियां, और फिर ये सब खजाने, चाहे प्योरिटी है, खुशी है, ज्ञान का खजाना है, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, ये सब हम बुद्धि में भरते जा रहे हैं। तो इतनी सुंदर चीजें हमें भरनी हैं, तो खराब चीजों को क्या करेंगे? अब सोचो माताओं के घर में बहुत कीमती चीज आ गई हो और इतनी बड़ी हो कि 20 किलो का कंटेनर चाहिए, 20 लीटर का। अब आपके पास जो 20 लीटर का है उसमें आपने कुछ कुछ भरा हुआ है, मान लो गेहूं भरा हुआ है और माल आ गया बहुत कीमती। गेहूं तो किचरा नहीं है, वो तो अच्छी चीज है, तो गेहूं को भी खाली करके अच्छी सफाई करके रखेंगे ना वो भरने के लिए। और किसी ने गंदगी भर दी हो तो बहुत अच्छी सफाई धुलाई करनी पड़ेगी। अनेक मनुष्यों ने अपनी बुद्धि को गंदगी से फुल किया हुआ है, जो बहुत दुखी है, जो बहुत परेशान है, जो बहुत चिंतित हैं, जिनके मन में निगेटिव संकल्प चलते हैं, जो बहुत सोच रहे हैं, उसका एक ही बड़ा कारण है कि बुद्धि के सुंदर पात्र में गंदगी भर ली है। दूसरों को देखा है अपने को नहीं, दूसरों को जानने का ज्यादा प्रयास किया है, अपने को जानने का ख्याल ही नहीं रखा। एक ने कहा मुझे, तब से मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, यज्ञ को छोड़कर जा रहे थे कोई, मेरे पास भी लाए गए, भाई इनसे कुछ अच्छी बात कर लो। मैंने पूछा हुआ क्या? पहले तो कहा रंगीन कपड़े पहनने की इच्छा होती है, कोई नहीं पहन लेना चलो, पर मैं तो जानता हूं क्यों जा रहा है, कोई यज्ञ से खींच रहा है कुछ, क्या खींच रहा है पता है ना, बस मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप ही सोच लेना। मैंने कहा क्या बात हुई, क्यों जा रहे हैं? सबको देख लिया, ऐसे बोले। मैं भी सोचा इसको बता तो दूं ही ताकि ये भ्रम में न रह जाए। मैंने कहा तुमने सबको ही तो देखा है, बस गड़बड़ यहां हो गई, अपने को नहीं देखने की कोशिश की कभी भी। मैं कहा हो सके तो अपने को देख लेना जाके भी। तो देखो ये ऐसी चीज है जिसको मनुष्य एक गंदगी के रूप में भर लेता है ना, दूसरों को देख रहे हैं, गंदगी गंदगी भरी जा रही, और जिसकी ऐसी वृत्ति होती है ना दूसरों को देखने की, वो दूसरों की अच्छाई कभी नहीं देखते, नहीं तो कहेंगे नहीं हम दूसरों को देखते हैं, उन्हें तो लगता है यहां कोई भी अच्छा नहीं है। ईश्वरीय परिवार जिसमें संसार की सबसे महान आत्माएं रहती हैं, इनमें से उनको लगता है यहां कोई भी अच्छा नहीं है, उनको लगता है मैं ही अच्छा हूं बस, बाकी सब खराब हैं। तो अगर दूसरों को देखना है तो महान आत्माएं भी तो यही है ना, विजय रतन देवकुल की, पूरे 84 जन्मों के हीरो एक्टर भी तो ब्राह्मणों में ही हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, वो सब देवकुल की आत्माएं हैं। तो हम इन गंदगियों को साफ करें, लेकिन हमें पता हो कौन सी गंदगी भरी हुई है। कहानी सुनाया करते हैं ना, सत्संग हुआ सन्यासी का, एक माता ने कहा मेरे घर में कल आपको भोजन करने आना है, लेकिन मैं बहुत अशांत रहती हूँ, आपसे कुछ चर्चाएं करनी है। आ गए महाराज भोजन करने और कमंडल लेकर आए और उसमें आधे में गोबर भी भर लाए। खाना बनाया था माता जी ने, बहुत अच्छा, महाराज बैठो खाओ के नहीं खाऊंगा नहीं इसमें डाल दो। हम माता जी कहे इसमें तो गोबर भरा है आधा, कैसे भोजन डालूं, मैं तो खीर भी बनाई है, घी की पूरी भी बनाई है, कैसे डाल दूं इसमें। बस का यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, अब तुम्हें अच्छी चीज डालने के लिए इसको गिराना पड़ेगा, धो के साफ करना पड़ेगा ना, तुमने भी अपनी बुद्धि के पात्र में गंदगी भर ली है तो सुख शांति जैसी सुंदर चीजें कैसे आएंगी। सभी ध्यान दें, इस गंदगी को हमें निकालना है और स्वराज अधिकारी के अभ्यास से ये गंदगी हमें रियलाइज भी होगी, हमें पता भी चलेगा कि ये गंदगी है, नहीं तो बहुतों को पता नहीं चल रहा कि ये गंदगी है, वो गंदगी में जीते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि ये गंदगी है। वो दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, परचिंतन में लंबा समय गुजरता है, पता नहीं चलता। अब एक बात पर और चिंतन करेंगे, समय के लिए क्या कहा बाबा ने, कल तो परसों तो थोड़ा कम ही बोला, एक सेकंड एक घंटे के बराबर, नहीं तो क्या बोला था, तब मिनट कहा था, एक मिनट एक साल के बराबर है। और मतलब ये है कि बाबा समय का पूरा महत्व दिलाते हैं याद हमें, कि तुम्हारा जो वर्तमान समय है ये बहुत कीमती है और ये दिन याद आया करेंगे। याद रखना है बात, जब इस संसार में भंबोर को आग लगेगी, बहुत भयानक सीन होगा, जब संसार जलने लगेगा, जब युग परिवर्तन की वेला आ जाएगी, तब ये दिन याद आया करेंगे। बहुतों ने हम में से लंबा समय ईश्वरीय सुख लिया है, प्रभु पालना ली है, किसने कैसे अपना समय बिताया है, याद आया करेगा। आपने देखा होगा, आप सब पढ़े हैं, मुझे याद है जब हम दसवीं क्लास में पहुंचे तो हमारे पास दो ऐसे लड़के आके बैठने लगे जो वहां के गुंडे भी थे, दसवीं क्लास में बड़े हो गए थे, थोड़ा दादागिरी करते थे पहले से, गांव के होते हैं ना, कईयों को शुरू से ही दादागिरी का आदत पड़ जाती है, जब चाहे स्कूल बंद करा दें, मेरे पास आके बैठने लगे। अब मुझे दूसरों ने कहा ये तो बदमाश हैं, तुम्हारे पास आके बैठने लगे, इनसे बचना। मैं आगे बैठता था, वो बैठने लगे। दो चार दिन के बाद मैंने उनसे पूछा, भाई क्या बात है, ऐसे ही हालचाल पूछा, तो उन्होंने बोला हमें अब आपकी मदद चाहिए। मैंने कहा, मैं उनके देखने में उनसे बहुत छोटा लगता था कद में, बताया कि हम तीन बार फेल हो चुके हैं दसवीं में, तो आयु बढ़ गई थी और लंबाई बढ़ गई थी। मैंने कहा फिर का, इस बार जब हम फेल हुए तो हम अंदर में बहुत पश्चाताप करने लगे कि जो पास हुए हैं, चाहे वो थर्ड क्लास से हुए हैं, वो कितने खुश हैं, और हमारे चेहरों पे उदासी है, निराशा है। अब हमें वो सब काम नहीं करने हैं और अब पढ़ना है। फिर मैं सोचा है तो बड़ी अच्छी बात है, चलो पढ़ना भाई। तो फिर वो सेकंड क्लास में पास हो गए। मनुष्य जब फेलियर हो जाता है तब समय को याद करता है ना, लेकिन हम इस संगम को याद करेंगे अंत में कि भगवान आए, उसने भाग्य बांटा, उसने शक्तियां दी, उसने वरदान दिए और हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। यही बात होनी चाहिए ना, हम ये नहीं सोच के जाएं कि अरे ये चीज रह गई, देखा हमने वहां टाइम वेस्ट कर दिया, हमने ये कर दिया, हम यहां उलझे रहे वहां उलझे रहे, ये नहीं। तो आप चिंतन करेंगे सभी, ये लास्ट बात, सभी बहुत अच्छी तरह चिंतन करेंगे, हम अपने संगम युग के अनमोल क्षणों को कैसे बिता रहे हैं। रोज हमारा कैसा बीतता है, सवेरे से उठकर और सोने तक हमारा जो दिन बीतता है, जीवन बीतता है ना, ये भी वो कैसे बीतता है। सफल है श्वास, सफल है हर पल, या खाली रहते हैं। कई लोग घंटों घंटों टाइम बिताते हैं, बैठे रहते हैं, बात करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि अनमोल समय बीत रहा है। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि क्या करें इस अनमोल समय में। हमें याद रखना है हमारे एक एक सेकंड के सुंदर वाइब्रेशंस चांद तारों को बदलेंगे, प्रकृति को बदलेंगे, हवा को, धूप को बदलेंगे, प्रकृति को अति सुंदर बनाएंगे। ये आप ही थोड़ा ही बनेगी, ये हम सब आत्माओं ने अपने वाइब्रेशन से बनाया है। तो हम अपने समय को खुद वैल्यू दें। सवेरे कैसा बीतता है, मुरली के समय कैसा बीतता है, सेवाओं के समय कैसा बीतता है, हम सेवा सच्चे दिल से करते हैं या आनाकानी से करते हैं, हम दूसरों को सुख देते हुए जीवन बिता रहे हैं, हम सुख ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, हम भगवान के पास आ गए हैं। देखो भक्ति में जो जो था सब प्रैक्टिकल में है। भक्ति में भी कहते थे सब कुछ तेरा। एक बहुत अच्छा गीत बजता है, मैं भी कभी कभी बजा लेता हूँ, हे प्रभु एक बार दिल से कह दो तुम मेरे हो। और अब तो प्रभु जी ने रोज कह दिया तुम मेरे हो, कहने की बात नहीं रही, हम आ गए उसके बहुत समीप। उसमें ये भी है एक बार गले से लगा लो, अब तो रोज लगा लेता है। तो जो भक्ति में गायन थे, जिसकी कामनाएं थी, वो सब साकार हो गया ना। तो कैसे बिता रहे हैं हम अपने भाग्य बनाने के दिन, कैसे बिता रहे हैं हम अपने पूरी शक्तियों से स्वयं को भरने के दिन, वरदानों से भरपूर होने के ये दिन हैं, क्योंकि समय देने का आ रहा है। उस समय की अभी तो किसी को कल्पना ही नहीं है, लेकिन जब सारा संसार किसके पीछे होगा, बोलो विजय बाबू, हम सब के पीछे, लेकिन उनके जो सर्व खजानों से संपन्न हैं, देंगे। देने का समय आ रहा है, क्योंकि संसार का हाल ऐसा हो जाएगा, न मेडिकल साइंस डॉक्टर्स काम कर पाएंगे, न धन काम आएगा, न जन काम आएंगे, प्रैक्टिकल दिखाई देगा कोई किसी का नहीं। तो लोग उनकी तरफ देखेंगे जिनके पास ईश्वरीय खजाने हैं, उनसे ही राहत मिलेगी। तो सब अब ये लक्ष्य बना ले, हमें सबको सब कुछ देने के लिए अपने को सर्व खजानों से भरपूर करना। वो खजाने सुखों का, शांति का, शक्तियों का, प्योरिटी का, ज्ञान का भी। एकाग्रता से ये सब हमें बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं, चिंतन से प्राप्त होते हैं, योग से प्राप्त होते हैं। तो हमारी अब लास्ट बात में भी लास्ट सुन लें, कल्प की क्लोजिंग सुंदर हो जाएगी। कल्प की क्लोजिंग होगी, 3 दिन की यहाँ सेमिनार होते रहते ना, ज्ञान सौर में क्लोजिंग रखते हैं, वैलिडिट्री सेशन बोलते हैं। क्लोजिंग सुंदर होगी, कल्प समाप्त किया हमने, क्लोजिंग फर्स्ट क्लास, और फिर आएंगे उसको ओपनिंग कहें तो ओपनिंग भी बहुत सुंदर। तो क्लोजिंग ऐसी हो वाह वाह करते जाएं, जैसे कल परसों कहा बाबा ने, जो अमृत वेले को महत्व देते हैं, शक्ति और वरदानों को रिसीव करते हैं, उन्हें बाबा सर्टिफिकेट देते हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। कितनी सुंदर बात है, कैसी अच्छी क्लोजिंग। तो सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। ओम शांति। अब स्वराज्य अधिकारी बनकर बैठेंगे, बैठे सब अपने अपने सिंहासन पर राजा बनकर, और मास्टर सर्वशक्तिवान, और ये फीलिंग ले मैं मालिक हूं।